ये जो इस तरह के उलूम होते हैं जैसे टेलीपैथी है, हैप्नोटिज्म है, इसको किस नज़र से देखा जाता है इस्लाम की रोशनी में? ये ठीक है, ये इस तरह के उलूम हासिल करना और इसे प्रैक्टिस करना, या ये इसमें भी कोई गुमराही है?
देखिए, बात यह है कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका, मजहब तो तब मुदाखलत करेगा जब कोई अखलाकी मसला पैदा होगा, यानी मजहब अपने दायरे ही में मुदाखलत करता है। कोई अकीदे का मसला पैदा हो गया, मैंने अर्ज किया कि वो भी अखलाकी मसला है, यानी अल्लाह ताला के हवाले से जो तालीम हमको अंबिया ने दी है उसमें आपने कोई मसला पैदा कर दिया, या अखलाकी उसूल जिनकी हमको दुनिया में पैरवी करनी है उसमें कोई मसला पैदा कर दिया, तो मजहब तब मुदाखलत करेगा। ये जितने उलूम हैं इनमें से बाज़ के बारे में अकल्ट साइंसेज की ताबीर इख्तियार की जाती है।
जी
देखिए, साइंस में क्या होता है, मफरूज़े पहले वजूद में आते हैं। ये मफरूज़ा यहाँ इल्मी मानी में बोला जाता है,
ठीक है,
हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस, ठीक है।
उसके बाद आप उसको बहुत से तजुर्बात से गुजारते हैं, बाज़ औक़ात उन तजुर्बात के नतीजे में भी हकीकत के दर्जे तक चीज़ नहीं पहुँचती, नज़रिए के दर्जे में पहुँचती,
थ्योरी बन जाती है वो,
थ्योरी बन जाती है।
बिल्कुल ठीक है।
थ्योरी महज हाइपोथेसिस नहीं होता,
हाँ ठीक है, उससे
यानी
बढ़कर एक एक स्टेप,
उससे
उससे
अगला कदम
अगला
होता है।
कदम
जैसे
है।
बहुत से लोग कहते हैं ना कि डार्विन का इर्तका का नज़रिया एक नज़रिया है, तो नज़रिया ये कोई छोटा लफ्ज़ नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऐसे शवाहिद मिल गए हैं, ऐसी चीज़ें ताईद में खड़ी हैं जिनकी बुनियाद पर एक साइंसी नज़रिया की बुनियाद रखी जा
रखी
सके।
गई, ठीक है,
हकीकत होना अभी लाज़िम नहीं है।
ठीक,
अब ये जो सारा अमल है ये बाकी उलूम में भी होगा,
डेफिनेटली
हिप्नोटिज्म
होगा,
में भी होगा, टेलीपैथी में भी होगा, ये हाथों की लकीरें देखने में भी होगा,
पामिस्ट्री में भी होगा,
सब
होगा,
जगह होगा
बिल्कुल
ना।
होगा।
तो इस सारे मरहले के दौरान में आप उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि इल्म इन मराहल से गुजरने के बाद ही हकीकी इल्म बनता है। अलबत्ता आपका रवैया ठीक होना चाहिए, यानी जब तक इल्म मफरूज़ा है मफरूज़े ही के तौर पर पेश कीजिए, जब वो नज़रिया है तो नज़रिए के तौर पर पेश कीजिए, जब वो फैक्ट या हकीकत बन गया तो फिर उसको हकीकत के तौर पर पेश कीजिए। तो गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है कि हम पहली स्टेज पर ही बहुत सी चीज़ों को हकीकत, बल्कि हकीकत मुतलका की सतह पर ले जाकर पेश कर देते हैं।
दूसरी एक्सट्रीम भी होती है, हम पहली स्टेज पर उसे शिर्क और गुमराही कहना शुरू कर देते हैं, ये भी तो स्टेज होती है।
शिर्क और गुमराही कहने के लिए तो आपको दलील देनी पड़ेगी। वो पहली स्टेज पर भी अगर कोई चीज़ शिर्क की पैदा कर रही है तो वो बात कही जा सकती है उसके बारे में,
अच्छा
लेकिन इल्म के बारे में ये बात जहन में रखनी चाहिए कि उसको इन मराहल से गुजरना होता है।
ठीक है,
इनमें अगर आप बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े होकर उस इल्म का मुताला कर रहे हैं या उस बात को बयान कर रहे हैं कोई एतराज़ नहीं, उससे आप तजावुज़ करेंगे तो फिर बड़े मसले पैदा होंगे। लेकिन इन उलूम का एक दूसरा पहलू है, वो दूसरा पहलू ये है कि इनके नतीजे में बाज़ औक़ात अख़लाक़ी मसले पैदा हो जाते हैं, यानी अपनी ज़ात में बात में गलती नहीं होती लेकिन नतीजा, मसलन एक आदमी के पास आप जाते हैं और आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई, आपने जाके उससे कहा कि मुझे मालूम हुआ कि आप अपने किसी इल्म के ज़रिए से चोर का बता देते हैं,
ठीक है,
उसने आपके एक रिश्तेदार का नाम ले दिया, इससे बहुत अख़लाक़ी मसले पैदा हो जाएंगे, ये चीज़ बाज़ औक़ात बड़े फसाद का ज़रिया बन जाएगी।
और हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है
हर
फसाद
सोसाइटी में
का।
ऐसा होता है। अच्छा, फिर ये कि इसमें एतमाद एक दर्जे पर दे दिया जाता है, बाज़ औक़ात उस दर्जे का एतमाद होता है जो सिर्फ खुदा की इत्तला पर होना चाहिए, नौबत शिर्क तक पहुंच जाती है। इसलिए कि बहरहाल ये इल्म है ना, इसमें आंखों से मुशाहिदा नहीं किया गया। महकमा मौसमियात भी अपने इल्म की बुनियाद पर पेशीन गोई करता है तो बहुत से इफ्स बट्स के साथ करता
जाहिर है,
है,
हाँ बिल्कुल
बहुत सी
ठीक,
बातें कह के करता है।
बिल्कुल ठीक
तो
है।
ये चीज़ है कि आप किसी चीज़ को पेश करने का तरीका क्या इख्तियार करते हैं। मसलन एक आदमी जो है वो आपका हाथ देखता है, हाथ की लकीरें देखने के बाद वो ये कहता है कि ये जो हमारा इल्म है इस इल्म में आपके कैरेक्टर के ये पहलू नुमाया होते हैं, इससे कुछ ये इम्कानात भी महसूस होते हैं। बात इतनी है तो कोई काबिल एतराज़ नहीं, लेकिन इंसान यहाँ तक रहता नहीं,
और फिर आगे बढ़ जाता
वो
है।
इससे बहुत आगे बढ़ जाता है। अब जब इस तरह के मामलात किसी इल्म में होने लग जाए, यानी उसमें इंसान बहुत आगे बढ़ जाए, उसमें अखलाकी कबाहतें पैदा होने का अंदेशा हो जाए, उसमें ये इम्कान हो जाए कि आदमी बाज़ मुशरिकाना अकायद इख्तियार कर लेगा या खुदा के मुकाबले में अपने इल्म को पेश करना शुरू कर देगा, तो फिर एक और उसूल है और वो उसूल है सद्द ज़रिया का उसूल, यानी जब किसी चीज़ में ऐसे फसाद का अंदेशा हो तो बाज़ औक़ात उससे बिल्कुल इब्तदा में रोक दिया जाता है।
अच्छा ठीक है,
तो इसलिए आम लोगों को बाज़ औक़ात तवज्जो दिलाई जाती है कि वो इन उलूम के पीछे ना जाए। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि बहुत अच्छे सियासी लीडर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और बर्कले के पढ़े हुए, वो जाकर बाज़ लोगों से छड़ियाँ खा रहे होते हैं। ये आपको इंसानियत की तौहीन नहीं मालूम होती? बाज़ औक़ात वो इन्हीं उलूम के माहिरीन की बातों पर एतमाद करके कौमों और मुल्कों के फैसले कर रहे होते हैं।
लेकिन फिर
तो इसलिए ये वो तवज्जो है कि ये उलूम साइंस नहीं है, इनके यहाँ अभी मामला ये नहीं है कि इनके नतायज वाकई नतायज बन गए हैं, इनमें बहुत सी चीज़ें अभी मफरूजे के दर्जे में हैं, बहुत सी चीज़ें नज़रिए के दर्जे में हैं, इनमें काम भी बाज़ चीज़ों पर नहीं हुआ, बाज़ चीज़ों को सीना बसीना उलूम कहकर उस तरीके से लेबॉरेटरी में आने ही नहीं दिया जाता कि उनका तज्जिया किया जा सके। तो चुनांचे हर मुसलमान को मोहतात रहना चाहिए और सद्द ज़रिया के उसूल पर मोहतात रहना चाहिए कि इसमें इम्कान है कि आप शिर्क में पड़ जाएंगे, इम्कान है कि आप अखलाकी चीज़ों में उलझ जाएंगे। यही वो उसूल है जिस पर हारूत और मारूत अल्लाह के फरिश्ते हैं, उनको जो इल्म दिया गया वो इल्म भी इल्म हकीकी है लेकिन उसके नतायज गैर अखलाकी हो सकते हैं। तो वो ये कहते थे कि इन्नमा नहनु फितना फला तकफुर, हमें खुदा ने एक इम्तहान बना के भेजा है, इसलिए वो तरीका ना इख्तियार करो जिसका नतीजा कुफर में निकलने वाला है। यानी वहाँ फेल नतीजा है, फेल के मानी में इस्तेमाल हुआ है। हम तवज्जो दिलाते हैं, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तवज्जो दिलाई है कि इन उलूम के मामले में बड़ी एहतियात का रवैया रखना चाहिए। अच्छा, इनमें बहुत अंदेशे हैं।
अच्छा, अंदेशे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुरान मजीद जो इशारे देता है उसमें तो कुरान मजीद इस तरह से वार्निंग नहीं दे रहा, बल्कि यानी एक पैगंबर जलील कदर पैगंबर हैं, उनके वाकई में अल्लाह ताला कहता है कि उन्होंने तख्त को मंगवाना था तो वो एक शख्स था, उसने पलक झपकते तख्त मंगवा लिया। अब ये टेली ट्रांसपोर्टेशन है, जिस तरह टेलीपैथी है उस तरह टेली ट्रांसपोर्टेशन है, और उस पैगंबर के सामने ये हुआ और पैगंबर के कहने पर हुआ ये। यानी अल्लाह ताला ने ये बात कोई उसको तवज्जो दिलाने के लिए नहीं कही, हमें रोका नहीं है इसमें। नंबर टू, हम देखते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब कहा जाता है मेले में जाने के लिए तो आप फरमाते हैं फ़नज़रा नज़रतन फिन नजूम फ़काला इन्नी सकीम, उसमें तर्जुमा ये किया गया कि वो उन्होंने सितारों को देखा और कहा कि मेरी तबीयत शायद ख़राब होने वाली है। तर्जुमे की मैं बात कर रहा हूँ, वो गलत भी हो सकता है तर्जुमा, ये तर्जुमा किया गया। इसका मतलब कि वो सितारों की चाल देखकर उन्हें ये महसूस हुआ कि मेरी तबीयत अब ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह की जो मामलात हैं, या फिर हम देखते हैं कि पैगंबरों के ख्वाब तो खैर सच्चे हैं, वो पैगंबर हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फिरौन ने अपने जादूगरों से पूछा कि मैंने ख्वाब देखा है कि ये होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि वो बनी इसराइल में से एक शख्स होगा और जो तुम्हारी सल्तनत का खात्मा कर देगा, तो वो बिल्कुल सही हुआ, ख्वाब सही हुआ। तो इस तरह की चीज़ें, तो कुरान मजीद इस ऐसे बयान कर रहा है कि जैसे वो बता रहा है कि ये चीज़ें हैं मौजूद।
तो इससे ये मालूम हुआ कि ये उलूम है, इस पर कोई शुबा नहीं। देखिए ना, जो वाकया आपने सबसे पहले सुनाया उसमें कुरान के अल्फाज क्या हैं, अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, यानी वो जो शख्स था जो मलका बिल्किस का तख्त उठा के ले आया, कमोबेश अंदाज़ा किया जा सकता है 1500 मील के फासले से।
बिल्कुल ठीक,
यानी कोई मामूली फासला नहीं है, 1500 मील के फासले से चश्म जदन में उठा के ले आया। हो सकता है कदीम ज़माने में लोगों को तअज्जुब होता हो, होता ही होगा,
होता ही होगा,
हम देखते हैं पढ़ते भी हैं कि लोगों को तअज्जुब भी होता था, लेकिन अब आज के ज़माने में आप मरीख पर होने वाली गुफ्तगू
यहाँ सुन सकते हैं,
बल्कि गुफ्तगू क्या आप देख सकते हैं,
देख सकते हैं,
यानी आप पूरे के पूरे शख्स को उसकी शबीह के साथ उठा के ले आते हैं, उस पूरे माहौल को उठा के ले आते हैं। इसी वक्त अगर अमरीका का सदर गुफ्तगू करे तो हम अपने कमरे में बैठ के उसको बैन ही सुन सकते हैं, वो जिस घास पर खड़ा हुआ होगा, जिस डाइस पर खड़ा हुआ होगा, उसको भी देख सकते हैं।
सही है,
एक एक मूवमेंट, एक एक हरकत हमारी निगाहों में आ जाती है। तो ये उठा के ले आए हैं ना, पूरी की पूरी चीज़ को उठा के ले आए हैं। तो इस वजह से ये बताया गया है कि ये उलूम है। मैंने शायद इससे पहले कहीं गुफ्तगू करते बताया था कि जिस तरीके से मादी कवानीन की दरियाफ्त से साइंसी उलूम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि अब मौजज़ात हो रहे हैं, ये मौजज़ात ही है ना। आज से 200 साल पहले कोई आदमी बयान करता कि अमरीका का सदर हज़ारों मील के फासले पर गुफ्तगू करेगा और हम उसको घर में बैठे हुए देख रहे होते, तो लोग उसका मुंह नोच लेते, पागल हो गया है, बेवकूफ़ हो गया है, लेकिन ये हो गया। मादे में कवानीन थे, उनको दरियाफ्त किया गया। इसी तरह एक दूसरी चीज़ दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक नफ्स और एक मादा। तो नफ्स के अंदर भी कवानीन कार फरमा है, उन कवानीन का मुताला करने के नतीजे में ये उलूम पैदा हो जाते हैं। तो अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब का ठीक तर्जुमा क्या है, उसके पास नविश्ता खुदावंदी का एक इल्म था, कानून खुदावंदी का एक इल्म था। यानी जो कानून नफ्स इंसानी में कार फरमा है, जो कानून मादे में कार फरमा है, आप कहते हैं ना न्यूटन का पहला कानून दूसरा कानून, तो ये जो कवानीन मादे के अंदर कार फरमा है उनका जब मुताला करके उनको दरियाफ्त कर लिया जाए तो साइंस वजूद में आती है।
ठीक है,
जब इसी तरह नफ्स के कवानीन को दरियाफ्त किया जाता है तो उससे ये उलूम वजूद में आते हैं। तो इनकी हकीकत तो अपनी जगह है, ताहम तंबीह ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इसमें अताई भी होंगे, इसमें हदूद से तजावज़ करने वाले भी होंगे। तो जिसने पैगम्बर की मौजूदगी पर तख्त ला के पेश किया, बल्कि उसने अपनी तरफ से जिन्नात के जवाब में ये बात कही,
पैगंबर
की तस्वीर हुई, तो वहाँ तो कोई अंदेशा नहीं रहा बाकी। तो अल्लाह का पैगंबर अगर किसी जगह मौजूद हो और वो किसी इलम को कबूल कर ले तो फिर तो क्या कहने हैं। लेकिन किसी इलम को कबूल कर ले उसके साथ उस इलम का माहिर भी खड़ा है कि उस पर उसको कितना एतमाद है, उसका इलम किस दर्जे का है। अब उसको हम उसूल के तौर पर लेकर हर अताई की तरफ तो मंसूब नहीं कर सकते।
ठीक है,
तो इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि इलम तो ये मौजूद है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। बाकी जहाँ तक ख्वाब का ताल्लुक है तो ये मालूम है कि ख्वाब में क्या होता है। असल में हमारा नफ्स उसमें तमसील के रंग में हकायक का मुशाहिदा करता है। वो हकायक कहाँ पाए जाते हैं? बाज़ औक़ात हमारे बातिन में, बाज़ औक़ात हमारे जिस्म में। मैंने उसकी कई मिसालें कई मरतबा दी हैं कि बाज़ औक़ात जिस्म के साथ गुजरने वाले अहवाल को नफ्स तफसील में बदल के ख्वाब दिखा देता है आपको। बाज़ औक़ात वो खारिज में होते हैं, मसलन जिन्नात आपके साथ मामला करते हैं और नफ्स उनके उस खतूर को तमसील में बदल देता है। और ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला किसी मौके पर रहनुमाई फरमाते हैं, उसके लिए भी इसी मीडियम को, इसी जरिए को इस्तेमाल करते हैं। चुनाचे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान मजीद में ये ऐलान किया गया कि आप खातमन नबीन हैं, यानी आप पर नबूवत अपनी हकीकत के लिहाज से ख़त्म हो गई, आपके बाद अब किसी मफहूम में भी कोई नबी नहीं आएगा, तो आपने क्या कहा? लम यबका मिनन नबूवत इल मुबशरात।
सही है,
नबूवत अपनी हकीकत के लिहाज से ख़त्म हो गई है, मुबशरात बाकी हैं। लोगों ने पूछा कि मल मुबशरात, ये क्या चीज़ है? आपने मैं रोय रजुल साले, एक नेक आदमी का ख्वाब। तो इस वजह से ख्वाब में जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, इंसान का बातिन 90% हमारे ख्वाब हमारे बातिन का मुशाहिदा होते हैं, यानी हमारी अपनी तमन्नाएँ, हमारी अपनी उमंगें, हमारी छुपी हुई ख्वाहिशें, हमारा माजी, हमारे मुस्तकबिल के मंसूबे, उन्हीं को तमसील में डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जिन्नात के खतूर के नतीजे में आए, और ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला कोई रहनुमाई फरमाए। जिन लोगों को ख्वाबों का कुछ तजिया करने का मौका मिला है वो जानते हैं कि बाद लोगों में ये बड़ी गैर मामूली सलाहियत होती है, उन्हें बड़े सच्चे ख्वाब आते हैं। अच्छा, सच्चे ख्वाब आने का एक जरिया तो ये है कि अल्लाह ताला दिखाए, एक दूसरा जरिया ये खुद आपके नफ्स के अंदर मुस्तकबिल को देखने की सलाहियत मौजूद है।
अच्छा, वो नफ्स की,
यानी मेरी मेरी जो आंखें हैं, मेरी जो आंखें ये हैं, इनके कुछ हदूद हैं देखने की,
बिल्कुल
इन कानों के भी कुछ हदूद हैं, लेकिन नफ्स की आंखों के हदूद इससे बहुत आगे
हैं।
यानी मैं भी बाज़ औक़ात अहवाल का तज्जिया करके मुस्तकबिल के बारे में एक राय देता हूँ, ये मेरा जहनी और अकली अमल है, और वो ठीक हो जाता है तज्जिया। नफ्स इंसानी के अंदर ये सलाहियत इससे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पाई जाती है। तो इंसान बड़ी गैर मामूली मखलूक है।
और यही मामला फिर वो सितारों वाला भी है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम,
मैं उसी तरफ आ रहा था।
जी,
जो आयत आपने पढ़ी है उसमें ये बात नहीं बयान हुई। देखिए, कदीम ज़माने में, आज के ज़माने में अगर ताखीर हो रही हो, किसी बैठी जगह बैठे, मिसाल के तौर पर हम मजलिस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? उफ भाई, ये तो 12 बज रहे हैं दिन के, मुझे जाना चाहिए। ऐसा ही होगा ना?
बिल्कुल सही।
तो घड़ी को देखा, एक अच्छा अफसाना निगार अगर अफसाना लिख रहा होगा और वो उस मौके की तस्वीर कशी करेगा तो ये कहेगा कि फिर उन्होंने घड़ी पर एक निगाह डाली और कहा कि भाई अब तो तबीयत बहुत थकान महसूस कर रही है, अब घर चलना चाहिए। ऐसा ही है ना?
बिल्कुल ठीक।
ऐसा ही हुआ है, यानी उन्होंने देखा, नजर नजरतन फिर नजूम, उन्होंने एक निगाह डाली तो तारों से लोग वक्त का अंदाज़ा करते थे। मेरा तो चूंकि देहाती पस मंज़र है तो मैंने तो अपना सारा बचपन इसी हाल में गुजारा है कि मेरी माँ बाहर निकल कर तारों पर निगाह डाल के इफ्तार कराती थी, सैर कराती थी। यानी शहरी में ठीक अंदाजा
की चीज़ है,
तो वक्त का अंदाज़ा लगाया जाता था। तो उन्होंने वक्त का अंदाज़ा लगाया, यानी यूँ समझिए आप उसको बदल दें उस जुमले को, उन्होंने घड़ी देखी, एक टदल डाली और कहा कि भाई बहुत रात हो गई, मैं तो कुछ मांदा हो रहा हूँ। तो इसमें यहाँ कोई इलम है सितारों का, ना कोई उनकी उनकी तरफ जिस तरह के बाद रवायतों में बयान किया कि झूठ मंसूब कर दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं। बड़ी सादा गुफ्तगू है, आप अच्छी अरबी ज़ुबान जानते हो, उसका महल समझते हो। तो उन्होंने तारों पर एक निगाह डाली, वक्त का अंदाज़ा किया और फिर कहा कि रात बहुत हो गई, मैं तो कुछ अब थका हुआ हूँ, यही ना लेट रहा हूँ। ये है सारी गुफ्तगू।
ठीक है।